दीप्ति जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
दीप्ति जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जर्नलिज्म की बैकग्राउंड, 10 वर्ष तक जर्नलिज्म करने के बाद उसे छोड़ के नॉवेलिस्ट बनने का आपने कैसे सोचा?
मैं जैसे दिल्ली में, I was living there, I was working, I think I got burnt out pretty jaldi, I would say, and मैं योगा पढ़ रही थी और मैंने I got into the yoga world quite seriously. Then I got married and then I thought, okay, I don't want to stay in Delhi anymore. I want to move. And then I moved to Mysore to study more yoga ashtanga. And then after that, मैं गोवा गई क्योंकि वहाँ मेरे पति अंग्रेज थे तो मुझे लगा कि it was like the best place in India where we could live. And फिर जब मैं वहाँ गई, मतलब पहले तो बस मैं 5 बजे सुबह सुबह उठ के योगा करती थी. आई हैड अ वेरी गुड टीचर एंड फिर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मुझे लगा कि मतलब आई वॉजेंट राइटिंग देन, बट आई हैड अ लॉट ऑफ स्टोरीज. मैं दिल्ली में, व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट, आई वाज ड्राइविंग अराउंड अ लॉट. आई हैड सीन अ लॉट ऑफ दिल्ली सोसाइटी एंड देन आई थॉट, ओके, आई कुड ट्राई एंड राइट नॉवल. तो ये मतलब बिकॉज आई लेफ्ट दिल्ली, आई वाज एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन माई टाइम देयर. And I wanted to then write something exciting.
मतलब journalistic point of view से तो है ही आपके novels, पर उसमें sex, drugs, जो कि आम तौर पे आप Indian English writing में भी Indian writers से नहीं देखेंगे, ये western ज्यादातर माना जाता है कि जो Indian diaspora writer जब India का लिखता है तो वो ये जरूर लिख देते हैं, यू नो, जैसे कार्मा कोला बुक थी काफी पहले 90s में आई थी,
वो गीता मेहता की,
जी जी, तो कुछ उस तरीके का इन्फ्लुएंसेस आपकी राइटिंग पे, या कहें गोवा का इन्फ्लुएंसेस आपकी राइटिंग पे है?
नहीं, मैं तो जब मैंने मतलब फर्स्ट मेरे जैसे मेरे पति he's also a writer, he was writing a screenplay at that point of time, and so I had also started, I mean I had also just read all the books that we grow up reading, whether it's, so it was slightly old fashioned jo hum jaise India mein padhte hain, and wo sab ha Rushdie hai, Roy hai, wo to sab padh hi liya tha. Agar through him I was exposed to a lot of new writing, a lot of writing from America in the 50s, like William Burroughs and some very good English writers, some people I'd never heard of before. Aur phir jab maine ye kitabein jaise maine padhi, mujhe laga ki main bhi aise kuch kar sakti hu. Mujhe phir maine apni jaise influences thi wo change hui, aur Goa mein rehke bahut jaise shanti bhi thi aur time bhi tha. To aur वे दिस वॉज की 7 साल पहले था, तो इंटरनेट भी ज्यादा तक इतना नहीं था, विच इज नाउ आई थिंक की बहुत ही अच्छी चीज है कि ज्यादा इंटरनेट नहीं होनी चाहिए जब किताब लिखना है. तो मतलब यू नो, इसी एनवायरमेंट में आई वॉज रीडिंग, आई वॉज वॉचिंग फिल्म, एंड दीज इन्फ्लुएंसेज वॉज कमिंग इन टू मी स्लोली. एंड पहले जैसे मैंने शुरू की ये बुक, तो मैंने सोचा कि जो रेगुलर स्टाइल में होती है नॉवेल्स वैसे ही लिखूंगी. और आफ्टर फ्यू ट्राइज, मे बी लाइक 3-4 months, मुझे लगा नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग. आई शुड नॉट राइट थिंकिंग कि दिस इज वॉट पीपल वॉन्ट टू रीड, आई शुड राइट फॉर माई सेल्फ. एंड फिर वो बहुत टाइम, बहुत ड्राफ्ट लिखी मैंने, 3-4 बार लिखा, और बहुत ही मतलब कोशिश की, बहुत सुबह सुबह लिखती थी, और मतलब दो ढाई साल के बाद I was happy with something. और फिर मैंने एक एजेंट को अप्रोच किया, वो इंग्लैंड में, who was also the same agent for Arundhati Roy, and he's very good with Indian writers if they want to be published abroad internationally. And then I sent him my work and he liked it, so I was very lucky. And then he also sent and then he managed to make some very good deals for me in America, in England, and in India, of course. So ye story hai meri.
Aapne writing process ki baat ki, to main ye janna chahunga kitna zaruri hai na sirf shabdon ko sochna balki visualize bhi karna aapki puri kitab ko.
Visualization is very important. In fact, जब मैं लिख रही थी तो बहुत बार मैं जैसे सोचती थी कि मैं एक फिल्म लिख रही हूँ, या फिल्म नहीं लिख रही हूँ, मैं फिल्म में हूँ. तो लाइक अ फिल्म आई वॉज ट्राइंग टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज. एंड आई थिंक इट्स नॉट ऑलवेज द केस, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ राइटर्स डोंट यूज दैट अप्रोच, बट फॉर मी स्पेसिफिकली, और बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं किताब पढ़ के, कि इट्स वेरी विजुअल. though you imagine you are in Delhi when you're reading this.
Jee.
So I when I was writing it also, I was visualizing very heavily. I was imagining I was there. You know, and of course it is not on my life, but is influenced by my life. Because many drama bhi add kiya, suspense bhi add kiya. So, and I wanted that I to be very strong, identification with the writer, to shock. I wanted that shock because I think it's important for Indian women just, you know, to express themselves. And there's also an India that people don't know about.
आपने बात की women issues की, तो मैं जानना चाहूँगा, आप दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से ही हूँ. तो पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2011 या 12 के बाद से दिल्ली को एज अ वेरी ऑप्रेसिव प्लेस फॉर वुमेन प्रोजेक्ट किया जा रहा है मीडिया में, इंडियन मीडिया में भी, वेस्टर्न मीडिया में भी. तो उस पे क्या कहना चाहेंगी आप?
If you don't live in Delhi, तो आपको लगता है कि it's a very oppressive place. मगर हर बार, क्योंकि मेरी मम्मी अभी दिल्ली में रहती है, मैं बहुत जाती हूँ, मैं half the year I spend in Delhi. मुझे ये लग रहा है कि it's actually not, मतलब on a day-to-day basis, it's oppressive. ठीक है, you're walking down the street, you will get stared at. There are many ways that will happen to you. Public space में you won't be able to be yourself, and you have to dress, you know, keeping in mind all these things. रात में ऐसे कहीं नहीं जा सकते हैं. मगर मुझे लग रहा है कि अब दिल्ली में there's also another Delhi. There's also women walking freely. There are women wearing clothes that I would not have imagined 10 साल पहले. तो इतनी भी oppressive नहीं है. It's an interesting time. And I think women are also speaking out a lot more. And जैसे वो shaming भी हो रही है, if you get there's a sense of ki agar if tease someone, there's a sense ki you will get it's not right anymore. तो awareness बहुत हो रही है दिल्ली में. और इतनी भी, जैसे हाँ वैसे इतनी भी खराब city नहीं है, इतनी dangerous नहीं है. वो वैसे लोग बोलते हैं, I mean if there are other cities in the world which are also dangerous, like Mexico is dangerous, Mexico City. I mean of course compared to Sydney, you know, you can't compare the two. Sydney is so safe for women, but I think, you know, Delhi is not as dangerous as it's painted out to be, and if you take precautions then you can be okay there. But I mean of course having said that, bahut logo ko bahut sari cheeze hoti hain, so I can't speak for everyone.
Generalize nahi kar sakte hain, lekin
haan
main aapse ye
meri life kafi wahan privileged hai, meri gaadi hai, meri mummy ka driver hai, to fir mere liye to bahut aasan hai. But I know for women who are taking public transport bahut hi kathin hai, city is difficult.
Deepthi ji, aapki aane wali kitabe kaun si hain?
अभी मैं जो माय न्यू नॉवल जो मैं अभी लिख रही हूँ, आई एम हाफ वे थ्रू इट, ये वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय फर्स्ट नॉवल. इट्स नाम है मदर इंडिया. अभी आई डोंट नो इफ द टाइटल विल चेंज और नॉट. एंड इट्स अबाउट एन अमेरिकन गर्ल हु कम्स टू गोवा ऑन अ योगा रिट्रीट, एंड शी गोज मिसिंग, शी लीव्स द रिट्रीट, वो छोड़ के हिमालय चली जाती है. तो एंड देन इट इज नरेटेड बाय हर इंडियन योगा टीचर हु हैड बिकम हर फ्रेंड एंड टॉट हर योगा एट द रिट्रीट, एंड शी गेट्स अ फोन कॉल फ्रॉम द प्लेस वेयर शी गोज मिसिंग, एंड शी गोज अप टू फाइंड हर, एंड देन इट्स द स्टोरी जर्नी ऑफ दीज टू वुमेन. And it's about the ideas of India that, you know, people from outside have. Just say Americans' ideas of India, of yoga.
जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
नहीं, thank you for having me on your show. बहुत शुक्रिया.